इशिका इस वक्त राजवंश विला में थी। रूही को उसने अपनी गोद में ले रखा था। इशिका चाहती थी कि रूही को एक बार अपनी माँ के आखिरी दर्शन करने को मिले। हालांकि रूही इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इशिका ने मन ही मन निशानी से वादा किया कि वो रूही का हमेशा ध्यान रखेगी। वहीं रूही को सच का पता भी नहीं था, फिर भी ईशानी की तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब ईशानी रूही को लेकर खड़ी थी, तब उसके कानों में केशव सिंघानिया की आवाज़ पड़ी। इशिका को एक पल के लिए लगा कि केशव ने उसे पहचान लिया है। फिर उसने देखा कि केशव इशिका की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मिसेज राजवंश को जानती हो? वो मेरी क्लासमेट थी, इशिका ने अपना टोन चेंज करके जवाब दिया। केशव की आंखों में नमी थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, यकीन नहीं होता कि ये इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। आखिरी बार साथ में लंच करने का सोचा था, पर इसके किडनैप होने का पता चला। इसकी माँ के साथ गया था मैं सी साइड पर इसे देखने के लिए, पर ये हमें नहीं मिली। इसके जाने की खबर सुनकर राधिका भी अपने होश खो बैठी थी। केशव के बताने पर इशिका को एहसास हुआ कि वो उस दिन अपने हैंडसम अंकल के साथ लंच करने वाली थी। केशव ने उसे पहचाना नहीं था, ये देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। वो चुपचाप वहाँ खड़ी थी। तभी केशव ने आगे कहा, ये तुम्हारी क्लासमेट है तो तुम इसकी माँ मिसेस सिंघानिया को भी जानती होगी ना? राधिका का जिक्र आने पर इशिका ने जल्दी से उनकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। शायद उसे केशव से राधिका के बारे में पता चल सकता था। केशव ने आगे कहा, वो ठीक नहीं है, मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। अगर तुम मिसेज राजवंश की फ्रेंड हो तो मिसेज सिंघानिया से मिलने जा सकती हो। राधिका के ठीक ना होने की बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे। उसने धीरे से कहा, क्या वो ठीक नहीं है? मैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगी। इतना कहकर ऋषिका तुरंत वहां से दूसरी तरफ पलटी। तभी उसे तरुण दिखाई दिया। शायद माया ने तरुण के अच्छे खासे कान भर दिए थे। तरुण ने ऋषिका का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ज़्यादा किसी से बात मत करना, और तुम इधर उधर घूम रही हो, हम पकड़े जा सकते हैं। ऋषिका ने धीमी आवाज़ में जवाब में कहा, मैंने सुना है कि मिसेज राजवंश की माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अचानक तरुण की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। काश वो मेरी बेवकूफ़ वाइफ भी इतना ही स्मार्ट होती तो आज मेरी कंपनी बहुत आगे जा चुकी होती। तुमने तो यहाँ आते ही लोगों से जान पहचान बनाना शुरू कर दी है। मैंने सुना है कि मिस्टर राजवंश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे में तुम उनकी पत्नी की माँ से मिलने जाओगी तो शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तरुण ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इशिका ही सच में उसकी वाइफ हो। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल तरुण की बात मानना ही उसके लिए सही था। तभी अचानक तरुण के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। वो बोला, लेकिन मैं यहाँ ठीक से किसी से मिला नहीं हूँ, इतनी जल्दी मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं अकेली चली जाऊँगी, हम शाम को वापस होटल में मिलते हैं, इशिका ने जवाब दिया। तरुण ने उसे जाने के लिए हाँ कह दी थी। इशिका तुरंत वहाँ से चली गई थी और उसने जाने से पहले रूही को माया को सौंप दिया था। वहीं इशिका को छोड़ने के बाद तरुण दूसरी तरफ पलटा तो उसे केशव दिखाई दिए। क्या वो तुम्हारी पत्नी है? केशव ने तरुण को घूरते हुए पूछा। तरुण सिर हिलाकर बोला, हाँ वो मेरी पत्नी है, वो मिसेज राजवंश की क्लासमेट है। जब उसे पता चला कि मिसेज सिंघानिया की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने के लिए जा रही है। अब ऐसे वक्त में एक दोस्त ही काम आता है, वैसे उसका नाम ईशानी मर्चेंट है। क्या उसका सरनेम मर्चेंट है? तुम जानते हो कि यह सरनेम आम नहीं है, केशव ने भौहें उठाकर कहा। हाँ आम तो नहीं है, तरुण बेपरवाही से बोला। उसे वो सरनेम अपने पिता की तरफ से मिला है, केशव ने पूछा। राधिका का सरनेम भी मर्चेंट था, इस वजह से वो थोड़ी छानबीन कर रहे थे। वहीं उनकी बातों से चिढ़ते हुए तरुण ने जवाब दिया, अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना है, जाकर अपना काम करो ना। मेरी पत्नी के सरनेम और बाप से तुम्हें कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? आखिर हो कौन तुम? मेरा नाम केशव सिंघानिया है, केशव ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसी के साथ तरुण के चेहरे के भाव नर्म हो गए थे। अरे माफ कीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, तरुण ने तुरंत अपनी भूल सुधारते हुए कहा। तरुण को केशव के बारे में पता चलते ही वो उनके पीछे हो गया था। वहीं इशिका दूसरी तरफ वहां से बाहर निकली। ज्यादातर लोग वहां शोक मनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए आए थे। रास्ता साफ था तो इशिका आराम से निकल गई थी। वो थोड़ा आगे जाकर टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी उसे दिशांक दिखाई दिया। दिशांक किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। वो बोला, मैंने कह दिया मेरा मीटिंग करने का मूड नहीं है। मीटिंग कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी बॉस की मौत हो गई है। बात करते हुए वो इशिका की तरफ पलटा और अपने सनग्लासेस लगाने लगा। इशिका ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं। अचानक दिशांक की नज़र इशिका की तरफ गई। उसने कुछ देर ऋषिका को घूर कर देखा और फिर उसके पास आकर जल्दी से कहा, अरे मैम आप जिंदा हैं? मुझे अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बोलते हुए वो अपनी आंखें मसलने लगा। ऋषिका ने गहरी सांस ली और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दिशांक की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई थी। ऋषिका ने अपना मास्क उतारा। मेकअप और लेंसेज के बाद भी दिशांक ने उसे पहचान लिया था। ऊपर से जब पहली बार दिशांक ने उसे देखा तो उसने मास्क तक लगा रखा था। आपको पता नहीं मैं आपको देखकर कितना ज्यादा खुश हो रहा हूँ। पिछले कई दिन मेरे रोते हुए बीते हैं। इतना तो अभिमन्यु भी नहीं रोया होगा जितना मैं रो रहा था, दिशांक ने मुस्कुराकर कहा, हालांकि अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषिका ने कुछ टिश्यू पेपर उसे देते हुए कहा, अपना हुलिया सुधारो, क्या हाल बना रखा है तुमने। अभिमन्यु क्यों रोएगा, उसे पता है मैं जिंदा हूँ। क्या उसे पता है? ये तो बहुत गलत बात है बॉस, आपने उसे तक बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया, दिशांक ने बच्चों की तरह नाराज होते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, आप इस तरह सबसे छुप रही हो, इसका मतलब बात छोटी नहीं है, मुझे बताइए क्या हुआ था। ऋषिका ने गाड़ी स्टार्ट की। वो इस वक्त सिंघानिया मेंशन की तरफ जा रही थी। रास्ते में दिशांक ने उससे कहा, वैसे आप जिंदा है तो वो लाश किसकी है? डेड बॉडी बुरी तरह खराब हो चुकी थी, हालांकि मुझे यकीन था कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि डीएनए रिपोर्ट धोखा कैसे दे सकती है। डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से वो राधिका सिंघानिया की बेटी थी। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद वो मेरी बहन है, उम्र भी एक जैसी है तो जुड़वा बहन कह सकते हैं, ऋषिका ने धीमी आवाज में कहा। वो खुद अभी तक श्योर नहीं थी कि आखिर ईशानी के साथ उसका रिश्ता क्या था। सीरियसली जुड़वा बहन, ये कोई फिल्म चल रही है क्या जो इतने टाइम बाद जुड़वा बहन आ गई? जहां तक मुझे पता है राधिका सिंघानिया की एक ही बायोलॉजिकल डॉटर है और वो आप हैं। फिर ये जुड़वा बहन कहां से आ गई, दिशांक ने हैरानी जताते हुए पूछा। मुझे खुद नहीं पता, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ऋषिका ने जवाब दिया। ऋषिका को इस वक्त सबसे ज्यादा छुप कर रहने की जरूरत थी, तभी वो इस साजिश और साजिश करने वाले के बारे में पता लगा सकती थी। ऐसे में दिशांक उसकी मदद कर सकता था, वो पिछले कई सालों से उसके साथ था। दिशांक उसके लिए सबसे विश्वासपात्र लोगों में से एक था। जैसा कि ऋषिका ने सोचा था, उसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिशांक ने खुद से ही कहा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा।
सबसे पहले इस बात का पता लगाओ कि उस रेस्टोरेंट में मुझे और ईशानी को बेहोश किसने किया था। वो कौन थे जिन्होंने हमें बेहोश करने के बाद शिप पर फेंक दिया था? ऋषिका ने सख्ती से जवाब दिया। अगर उस दिन उसका और ईशानी का किडनैप नहीं हुआ होता तो शायद ऋषिका इस वक्त अभिमन्यु के साथ और ईशानी अपनी फैमिली के साथ जिंदा होती। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही इस मामले में पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटेज डिलीट कर दी गई है, दिशांक ने मायूसी से कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, शायद अभिमन्यु भी इस मामले में कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो भी है वो काफी शातिर है, उसने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर प्लान चेंज करते हैं, ऋषिका ने जवाब दिया। आप बताइए मुझे क्या करना है, दिशांक ने पूछा। मैं और ईशानी जिस बेहोश करने वाले कंपाउंड की वजह से बेहोश हुए थे, वो कंपाउंड मेरे लिए जाना पहचाना सा था। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है। मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम जाकर पता करो कि उसे किसने खरीदा था, ऋषिका बोली। ठीक है, समझ गया, और क्या करना है, दिशांक ने आगे पूछा। अचानक ऋषिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो कुछ पल रुककर बोली, ईशानी बहुत सी बातों को जानती है, मैं तुम्हें उसका स्केच बनाकर दूंगी, मुझे उसके जैसा ही एक मास्क चाहिए। किस्मत से हम दोनों की बॉडी और हाइट एक दूसरे से काफी सिमिलर है, मुझे ईशानी की जगह लेनी है। जानती हूँ ये बहुत रिस्की होने वाला है, पर फिलहाल के लिए यही जरूरी है। एक काम करो, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ ताकि मुझे उसकी जगह लेने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको ये नहीं करने दे सकता हूँ, आप इस तरह अभिमन्यु से दूर चली जाएंगी, प्लीज ये मत कीजिए, दिशांक जल्दी से बोला। वो ऋषिका का भला चाहता था और ऋषिका जो कर रही थी वो सीधा सीधा मौत के मुंह में कूदने जैसा था। ऋषिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दिशांक समझ गया था कि ऋषिका किसी की नहीं सुनने वाली है। दिशांक ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है कर दूंगा, ये सब करने में 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा, तब तक मैं ऋषिका बनकर चीजें मेंटेन करने की कोशिश करूंगी, ऋषिका ने जवाब दिया और गाड़ी हॉस्पिटल के आगे रोक दी, क्योंकि राधिका इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसने दिशांक को वहीं पर छोड़ दिया और राधिका से मिलने के लिए चली गई थी।